जमानों की उमंग बाब नंबर 20। जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो। गलीली के मर्दोजन ने उन हैरत अंगेज कामों की खबर अपने वतन में फैला दी जो यस्सू ने ईद फसा के मौके पर किए थे। यरूशलम में हैकल के मुख्तारों ने यस्सू मसीह के कामों पर नुक्ताचीनी की। उसने गलील में काम करने की राह हमवार कर दी। बहुत से लोग हैकल की बेहुरमती और काहनों की हिर्स और बेहिस्सी पर आठ आठ आंसू रोते थे। उन्हें पुख्ता यकीन हो चुका था कि यही नजात दहिंदा है जिसकी वजह से हाकिम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब वहां उसके नबी होने की खबरें भी पहुंचना शुरू हो गईं, जिससे उनकी उम्मीदों को तकवियत पहुंची। बल्कि उनके कानों तक ये खबर भी पहुंची कि उस नबी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला मसीह वही है। मगर नासरत के लोग उसका यकीन ना करते थे। इसी वजह से काना को जाते वक्त यस्सू नासरत में ना गया, बल्कि मसीह ने अपने शागिर्दों को जता दिया कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक ही दूसरे का तखमीना लगाता है। मसीह को तंग नजर और दुनियावी लोग उसकी पैदाइश और मामूली लिबास के लिहाज से जांचते। वो उसकी रूह की पाकीजगी का अंदाजा ली ना कर सकते जो खुद गहंगार और दुनियादार इंसान थे। मसीह यस्सू की वापसी की खबर कानाई गलील में फैल गई, जिससे दुखियों में अमन की लहर दौड़ गई। ये खबर कुफ्र नहूम में एक यहूदी शख्स को भी मिली जो बादशाह की फौज में मुलाजिम था। उसका बेटा ऐसी बीमारी में मुब्तला था जो लाइलाज ख्याल की जाती थी। तबीबों ने उसका इलाज करना छोड़ दिया था, मगर जब बाप ने यस्सू के बारे सुना तो उसने यस्सू की मदद तलब करने की ठानी। बच्चे की हालत बड़ी नाजुक थी, फिर भी बाप में मसीह के पास हाजिर होकर अपनी गुजारिश पेश करना जरूरी समझा। गोबाज ने उसे यहां तक कहा कि बच्चे की हालत सख्त खराब है और आपके वापस आने तक बच्चा शायद जिंदा ना रहे। मगर ये ईमान रखते हुए उसने किसी की ना सुनी कि अजीन तबीब जरूर उस पर तरस खाकर उसकी दरखास्त कबूल करेगा। जब वो काना पहुंचा तो उसने देखा कि मसीह के गिर्द बहुत बड़ी भीड़ जमा है। ताहम वो अपनी आरजू लिए हुए मसीह के कदमों में जा पहुंचा। उसके ईमान को धचका लगा जब उसने मसीह को मामूली से कपड़ों में मलबूस पाया। उसने ये भी देखा कि सफर की वजह से यस्सू के पांव गिर्द से अटे और जख्मी हैं। उसने दिल ही में कहा कि जिस काम के लिए मैं आया हूं शायद ये शख्स उसे अंजाम ना दे सके। सो उसके दिल में शक गुजरा। फिर भी उसने उससे दरखास्त की कि उसके साथ के उसे के घर चले। मसीह तो उसकी तकलीफ से बेशतर ही वाकिफ था। उसके अलावा मसीह ये भी जानता था कि उस बाप के दिल में शक है, और शक की बिना पर ही बाप अपने दिल में सोच रहा था कि अगर उसका मकसद हल ना हुआ तो यस्सू को मसीहा ना मानेगा। चुनाचे जब वो मसीह के हुजूर दिलदीर बैठा था, मसीह ने फरमाया, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हर गज ईमान ना लाओगे। हरचंद के तमाम सबूत मौजूद थे कि यही यस्सू मसीह है जो आने वाला था, फिर भी उस दरखास्त गुजार ने तहिया कर रखा था कि जब तक उसकी इल्तिजा कबूल नहीं होगी वो ईमान नहीं लाएगा। मसीह ने उस सामरी औरत के सादा ईमान का मुवाजना उस यहूदी सरदार के ईमान के साथ किया जिसने ना कोई निशान मांगा ना मोजजा की दरखास्त की। इससे यस्सू को अपने लोगों के ईमान को देखकर दुख हुआ, क्योंकि उनके पास इलाहों के सहायफ मौजूद थे। इसके बावजूद वो खुदा के बेटे को पहचानने में नाकाम रहे जो उनसे कलाम कर रहा था। फिर भी उस सरदार का कुछ न कुछ ईमान जरूर था, क्योंकि वो यस्सू से बेशकीमत नेमत लेने आया था, क्योंकि यस्सू उसे उसके बेटे की सेहत से भी कहीं ज्यादा ही नेमत देने को था, यानी उसके पूरे खानदान को नजात। और इसी खानदान के सबब यस्सू कफरनहूम में रोशनी का मीनार कायम करना चाहता था। मसीह के फजल को पाने से पहले उस सरदार के लिए लाजिम था कि अपनी कमी को महसूस करे। बादशाह का ये दरबारी अपनी कौम के कई लोगों की नुमाइंदगी करता था। कौम के सरदार खुदगर्जी के तहत मसीह में दिलचस्पी लेते थे। सासा अल्फाज में वो उसकी कुदरत और एहतियार के जरिए अपने लिए कोई दुनियावा मफाद पाने के चक्कर में थे, मगर वो अपनी रूहानी बीमारी से बेखबर थे और इलाही फजल की जरूरत महसूस न करते थे। यस्सू का कलाम उस पर बिजली की तरह गिरा और फौरन उसके दिल में उतर गया। अब उसने कहा कि वाकई वो यस्सू की तलाश खुदगर्जी से कर रहा था। उसका लड़खड़ाता हुआ ईमान उस पर असली रूप में जाहिर हुआ। फिर गुमान गालिब हुआ कि कहीं उसकी कम एतकादी उसके बेटे की जान न ले ले। उसे यकीन हो गया कि वो उसकी हुजूरी में है, जो दिलों और गुर्दों को जानता है और जिसके सामने सब कुछ मुमकिन है। बस वो चलाकर कहने लगा, ए खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। उसका ईमान अब मसीह में मजबूत हो गया। उसने याकूब की तरह यसू को थाम लिया, जिसने फरिश्ता को कहा था, जब तक तू मुझे बरकत न दे, मैं तुझे जाने न दूंगा। पैदाइश 26:32। बुजुर्ग याकूब की तरह वो सरदार भी कामयाब हुआ, जो रूह यसू मसीह के साथ चिमट जाती है और अपनी हाजत के लिए आहो नाला करती है। यसू उसे नाकाम नहीं लौटाता। बस यसू ने उस सरदार से कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का की जो यस्सू ने उससे कही यकीन किया और चला गया। न सिर्फ उसने ये यकीन किया कि मेरा बेटा बच जाएगा, बल्कि उसने ये भी यकीन कर लिया कि यही दुनिया का नजात दहिंदा है। कफरनहूम में वो लोग जो करीबुल मर्ग बच्चे की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने बच्चे में अचानक तब्दीली देखी। मौत के साए पिलत गए, यानी बुखार उतर गया, और बच्चे के मुंह पे रौनक आ गई। आंखों में रोशनी और बदन में कुव्वत लौट आई और बच्चे में बीमारी का कोई निशान बाकी न रहा। उसका बदन जो बुखार और बीमारी से झुलस रहा था, फितरी हालत में आ गया और वो गहरी नींद का लुत्फ उठाने लगा। कानाई गलील कफरनहूम से बहुत दूर तो न था। वालिद
शाम तक घर पहुंच सकता था, मगर वो अगली सुबह घर आया। घर आने पर उसे बड़ी खुशी हुई। जब वो घर से चला था तो गम से निढाल था। सूरज की गर्मी से वो सख्त बेचैन था। परिंदों के गीत उसे मजाक मालूम होते थे, मगर अब उसकी महसूसात बहुत फर्क थीं। तमाम फितरत उसके लिए यकसर बदल गई। अब वो हर चीज को नई आंख से देख रहा था। जब वो सुबह के वक्त सफर कर रहा था तो उसे ऐसे लगा जैसे तमाम फितरत उसके साथ मिलकर खुदा की तमजीद कर रही है। जब वो अभी घर से दूर ही था तो उसके नौकर भागे भागे उसके पास आए और बच्चे की सेहत के बारे खबर दी, मगर उसने उस खबर पर किसी रद्देअमल का इजहार ना किया, बल्कि पूछा कि उसे किस वक्त आराम आना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे उसका बुखार उतरना शुरू हो गया था, और ये वही वक्त था जब मसीह ने उसे बताया था कि तेरा बेटा जीता है। बाप भागकर अपने बच्चे को मिलने गया और उसे अपने सीने से लगाकर बार बार उसकी सेहत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा। वो सरदार खुदावन मसीह के बारे मजीद मालूम करना चाहता था, और बाद में जब उसने मसीह की तालीम को मजीद सुना तो मां खानदान मसीह के हल्का बगोश हो गया। बच्चे की बीमारी उस तमाम खानदान के लिए निजात का बाइस बन गई। इस मोजज़े की खबर फौरन दूरो नजदीक पहुंच गई और कफरनहूम मसीह की शख्सी खिदमत का मरकज बन गया। जिसने उस सरदार को कफरनहूम में बरकत दी, वो हमें भी बरकत देना चाहता है, मगर हम भी अक्सर उस सरदार की तरह सिर्फ यसू की चाहत अपने किसी जिस्मानी फायदे के तहत करते हैं, और जब हमारी दरखास्त कबूल होती है तो उसने बाद हम उस पर ईमान लाते और उसकी मोहब्बत में एतमाद दिखाते हैं। जो बरकात हम मांगते हैं, निजात दहिंदा हमें उनसे बढ़कर बरकात देना चाहता है, और जब वो हमारी दरखास्त कबूल करने में देरी करता है तो असल में वो हम पर हमारे दिल की बदी को जाहिर करने के लिए ही करता है, और हमारी उस जरूरत की तरफ इशारा करता है जिसके लिए हमें उसके फजल की बड़ी जरूरत होती है। उसकी तमन्ना होती है कि हम उस खुदगर्जी की नीयत को दूर करें जो हमें खुदा का इम्तिहान लेने पर उकसा रही थी। ये सरदार जिसका बच्चा मरने को था, अपनी दुआ की तकमील के बाद यीशु पर ईमान लाने का मंसूबा रखता था, मगर लाजिम था कि उससे पहले उसकी दरखास्त कबूल हो। वो यीशु मसीह की बातों का यकीन करता। ये सबक हमें भी सीखना जरूरी है। हमें उसके वादों में भरोसा रखना होगा। जब हम ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं तो हमारी हर दरखास्त उसके दिल में उतर जाती है। जब हमने उसकी बरकात की दरखास्त की है तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो हमें मिल गई हैं, और उसके लिए हमें खुदा का इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए कि जो कुछ हमने उससे मांगा था उसने हमें अता कर दिया है, और यही हमारा फर्ज है। लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर
हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। इफ्सियों 16:3, इफ्सियों 19:1।